বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে, খোড়ানিতায় বড় মজার কথা তাই, বড় মজার কথা তাই, শ্রদ্ধা মূল্য শুদ্ধ নাম সেই হাটেতে বিকায়, শ্রদ্ধা মূল্য শুদ্ধ নাম সেই হাটেতে বিকায়, খোড়ানিতায় যত ভক্ত বৃন্দবাসী, যত ভক্ত বৃন্দবাসী, অধিকারী দেখে নাম বেছে দ্বারকাশি, অধিকারী দেখে নাম বেছে দ্বারকাশি, যদি নাম কিনবে ভাই, যদি নাম কিনবে ভাই, আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যায়, খোড়ানিতায় তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম, তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম, দস্তুর লইব আমি পূর্ণ হবে কাম, খোড়ানিতায় বড় দয়াল নিত্যানন্দ, বড় দয়াল নিত্যানন্দ, শ্রদ্ধা মাত্র লয়ে দেন পরম আনন্দ, খোড়ানিতায় একবার দেখে চোখে জল, একবার দেখলে চোখে জল, গৌর বলে নিতায় দেন সকল সম্বল, খোড়ানিতায় দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, জাতি ধন বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা, খোড়ানিতায় খোড়ানিতায়। मनि छाड़े माया जाल, मनि छाड़े माया जाल। गृह थाको वन थाको न थाके जंजाल, खोड़ानिताय आर नई को कलीर भय, आर नई को कलीर भय। आचंडाल देनाम निताय दया माय, खोड़ा निताय, खोड़ा निताय। भक्ति विनोदा की कहे, भक्ति विनोदा की कहे। निताय चरण बिना नहीं आश्रय, निताय चरण बिना आर नाही आश्रय। खोड़ा निताय, खोड़ा निताय। बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय। बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर गाय। सुरा भी कुंजे ते नामेर हाट खुले छे, कोड़ानिताय, कोड़ानिताय। खोड़ा निताय, खोड़ा निताय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। इसी तिथि पर 500 साल से अधिक पूर्व वो एक चक्र गांव में जो आज बंगाल में है वहां प्रकट हुए। तो आज के दिवस पर हमें ये चर्चा करना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु हैं कौन, हमारे लिए पूजनीय क्यों हैं, उनका महत्व हमारे जीवन में क्या है, और फिर एक दो उनकी लीलाओं का भी श्रवण करना ये उचित होगा। तो नित्यानंद तत्व ये क्या है, ये पहले हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। परम भगवान परम सत्य श्री कृष्ण समय समय पर इस भौतिक संसार में अवतार लेते हैं, यहां आकर नाना प्रकार की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं और यहां के बद्ध जीवों का मन उद्धार कर आकृष्ट कर उनका उद्धार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो अलग अलग रूपों में आते हैं। कल ही वराह द्वादशी था तो रविवार को हमने देखा किस तरह से भगवान वराह का रूप लेकर आते हैं, कभी नरसिंह देव का रूप लेकर आते हैं, कभी मत्स्य अवतार होकर आते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के अवतार होते हैं। उनमें से एक भगवान का विशेष अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे देखा जाए तो अवतार नहीं है, अवतारी है। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार आते हैं। एते चांसकलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उन्हीं से सारे अवतार आते हैं और ये अवतार उनके अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करते हैं तो वो रूप अवतार न होते हुए अवतारी कहलाता है। परंतु क्योंकि अवतार शब्द का अर्थ ये है कि जो भगवान के धाम से नीचे भूतल पर उतरते हैं, इसलिए इस दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु को भी अवतार हम कह सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, से कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य से परिकर गण संगे सब धन्य। श्री कृष्ण अवतार लिए हैं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, वो श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं भक्त के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित रूप है। और जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं इस संसार में तो कभी भी अकेले नहीं आते हैं, उनके संग में हमेशा उनके पार्षद इत्यादि रहते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, से कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, कि वही श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो उनके साथ में से परिकर, तो वही कृष्ण के परिकर जो हैं या उनके जो साथी हैं पार्षद हैं वो अवतार लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के संग में, उन सबका धन्य हो, ऐसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लेते हैं यहां संसार में तो उनके साथ में भी उनके अवतार, उनके जो पार्षद होते हैं वो आते हैं, और उनके मुख्य पार्षद पंच तत्व कहलाते हैं। यहां सिंहासन पर आप देख सकते हैं पंच तत्व की तस्वीर है, गौर निताई है विराजमान है यहां मंदिर में। जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे बाईं ओर नित्यानंद प्रभु हैं और हमारे दाईं ओर श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके दाईं हमारे दाईं ओर और आगे जाएंगे जो पंच तत्व की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। तो ये पंच तत्व के संग महाप्रभु आते हैं, बल्कि महाप्रभु भी इस पंच तत्व के एक हिस्से हैं। ये पंच तत्व मतलब वही एक भगवान इन पांच रूपों में प्रकट होते हैं, एक में पांच। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। वही श्री कृष्ण पंच तत्व आत्मकम, ऐसे पांच रूपों में कृष्ण आते हैं। पहले उनके रूप हैं भक्त रूप, भक्त रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वही भगवान भक्त के रूप में आते हैं। दूसरे हैं भक्त स्वरूपकम, भक्त स्वरूप मतलब भगवान का विस्तारित रूप जो कि भक्त के रूप में आते हैं। कृष्ण के पहले विस्तारित रूप हैं बलराम जी। तो जिस तरह से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं उसी तरह से बलराम जी वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उनको भक्त स्वरूप कहते हैं। और तीसरे हैं भक्त अवतार, वही भगवान वो भक्त के रूप में अवतार लेते हैं, महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में अवतार लेते हैं। भक्त आख्यम भक्त के रूप, जो भक्त होते हैं भगवान के, शुद्ध भक्त भगवान के धाम से, वो अवतार लेते हैं, वो हैं श्रीवास ठाकुर। और भक्त शक्तिकम भक्त की शक्ति, ये है श्रीमती राधा रानी की शक्ति और वो है गदाधर पंडित। तो ये पांच हैं पंच तत्व, ये हमारे लिए पूजनीय हैं। एक भगवान है वो पंच तत्व, एक वस्तु कोनो नहीं भेद, रस आस्वादिते तबु विविध विभेद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि पंच तत्व क्या है, ये एक ही वस्तु है, ये एक ही भगवान है, लेकिन ये एक भगवान इन पांच रूपों में प्रकट हो रहे हैं। क्यों ये विविधता, ये विभेद क्यों है? रस का आस्वादन करने के लिए, अलग अलग तरह से अलग अलग भावों में रस का आस्वादन करते हैं। तो इन तीनों में से जो भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्त अवतार है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य,
ये तीन इनको प्रभु कहते हैं, प्रभु मतलब स्वयं वो भगवान ही है, और अन्य दो उनकी शक्ति है अर्थात गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। तो इन तीन प्रभु में से एक प्रभु महाप्रभु है क्योंकि वह स्वयं कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य इनको केवल प्रभु कहते हैं। तो इस दृष्टि से नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, बलराम जी के रूप है, लेकिन साथ साथ में भक्त के रूप में आकर चैतन्य महाप्रभु का कार्य संपन्न करने के लिए आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का कार्य यह भौतिक संसार में आकर क्या है? अनर्पित चरिम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, जो गौड़ी वैष्णव है, जो चैतन्य संप्रदाय में आ रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति सीखना चाहते हैं कलयुग में, उनके लिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक का मतलब क्या है? यह चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का कारण है। चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझने के लिए यह श्लोक आवश्यक है। अनर्पित चरीम चिरात, जो बहुत काल लंबे समय से चिरात अनर्पित, जो अर्पण नहीं किया हुआ था, आज तक जो वस्तु संसार में नहीं दी गई थी, कलौ अवतीर्णः, उसको अर्पण करने के लिए कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है। अनर्पित चरिम चिरात करुणयातीर्ण कलौ समर्पित, हमें देने के लिए उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। भगवान अवतार लिए हैं स्वभक्ति का धन देने के लिए। कृष्ण भक्ति का धन कितना अनमोल है, ये अनमोल धन प्रदान करने के लिए आए हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति तो हरेक अवतार देते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भक्ति दी थी, नरसिंह देव ने दी थी, वामन देव ने दी थी, हरेक अवतार भगवान की कृष्ण भक्ति देते हैं। तो ये अवतार में और अन्य अवतारों में अंतर क्या है? उन्नत उज्ज्वल रसाम, जिस रस का उपहार देने के लिए आए हैं भगवान, वो है माधुरी रस। माधुरी रस मतलब गोपियों का प्रेम। जो भक्ति गोपियों, वृंदावन की गोपियों की थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो भक्ति श्रृंगार रस या माधुरी रस, उसका आस्वादन सारे संसार को कराने के लिए ये रूप आए हैं, भगवान के विशेष रूप आए हैं। बहुत अद्भुत चीज है अनर्पित चरिम चिरात। बहुत आज तक किसी भगवान का ऐसा अवतार नहीं हुआ जिसने ये गोपियों का प्रेम प्रदान किया सबको। जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए थे तो उन्होंने गोपियों का प्रेम स्वीकार किया, लेकिन दूसरों को सिखलाया नहीं कि गोपियों की तरह कैसे मुझे प्रेम करना चाहिए। केवल गोपियों, कितने गोपियां कितने महान है, ये बात सिद्ध हो गई जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवतीर्ण हुए। लेकिन एक एक विशेष अवतार है जिसमें भगवान ने अपने आचरण से दिखाया है और दिखाकर सबको प्रदान किया है, ये श्रृंगार रस का अनमोल भेंट। और ये रूप का वर्णन क्या है? हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः। हरि, वही हरि आए हैं और उनके रूप में, उनका रूप कैसा है? कदंब संदीपित, बिल्कुल उज्ज्वलित है। कैसे? बिल्कुल पिघले हुए सोने के बराबर उनका रंग है, स्वर्ण रंग है उनका। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरंगस चंदनांगदी, महाभारत में भी महाप्रभु का वर्णन आता है। तो स्वर्ण रंग उनका होगा। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु का। और फिर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदना, शची माता के पुत्र के रूप में वो अवतार लेंगे और वही शची नंदन आपके हृदय में सदा विराजमान रहे, ताकि आपके भीतर ये उन्नत उज्ज्वल रस प्रकट हो जाए, ये भक्ति रस का स्वाद आपको भी मिले। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं सारे श्रोताओं को जो भी चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों को पूरे पंच तत्व आते हैं ये कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए तो अवश्य उन्होंने कृष्ण प्रेम तो दिया, लेकिन वो कृष्ण प्रेम एक बड़े तिजोरी में बंद रखा हुआ था और उसमें बड़ा ताला था। लेकिन जब पंच तत्व आए तो उन्होंने क्या कर दिया, इस तिजोरी का की डकैती कर दी। आ गए बड़े डकैत हुए ये पांच, आकर वो कृष्ण प्रेम का जो की जो तिजोरी थी उसका ताला तोड़ दिया, ढक्कन खोल दिया और लूटा, सारे उस तिजोरी को लूट लिया। लेकिन लूटा तो किया क्या, केवल अपने जेब में नहीं डाला, सब जगह बांटते गए। ये उनकी विशेषता है, इसलिए ये डकैती में और दूसरे डकैती में अंतर है। जब कोई डकैत बैंक को लूटते हैं तो जाकर जो भी पैसा मिल जाता है अपने जेब में डाल देते हैं, उसका भोग करते हैं। लेकिन पंच तत्वों ने ये सबसे अनमोल धन का की डकैती जब की तो सब जगह इस धन को बांट दिया। पात्रा पात्र न देखी स्थाना स्थान, कौन पात्र है कौन अपात्र है नहीं देखा, कौन सा सही स्थान है बांटने के लिए नहीं है ये भी नहीं देखा। तो जहां भी उन्होंने लोगों को देखा वहां बांटते गए। और एक अद्भुत चीज हुई कि जितना ज्यादा वो बांटते थे, जितना ज्यादा उस तिजोरी को लूटते थे, उतना ज्यादा तिजोरी के अंदर धन बढ़ता गया। बड़े विचित्र बात है, अगर किसी तिजोरी में 10 लाख रुपए हो और हमने 8 लाख उसमें से निकाल लिए तो 2 लाख रह जाते हैं, और 10 के 10 निकाल लिए तो खाली हो जाता है तिजोरी। लेकिन जब यह कृष्ण प्रेम धन की तिजोरी लूट ली पंचतत्व ने, तो जितना वो बाहर निकालते उतना बढ़ते रहता उस तिजोरी के भीतर, और जितना वो बांटते उनको आनंद आता और सारे संसार को उन्होंने कृष्ण प्रेम के बाढ़ में डुबा दिया और सभी लोग कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए। मतलब ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार होने का उद्देश्य है इस कृष्ण प्रेम का बाढ़ सारे संसार में फैलाना, तूफान। और ये बाढ़ को फैलाने में, इस कृष्ण प्रेम के धन के मुफ्त में वितरण करने के लिए नित्यानंद प्रभु उनके मुख्य सहायक हैं, असिस्टेंट, क्योंकि बलराम जी भी कृष्ण के संग ही रहते हैं वृंदावन में, इसलिए नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी के रूप हैं, लेकिन बड़े कृपालु रूप हैं। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, अंतर है तो एक ही है कि महाप्रभु और भी कृपालु है कृष्ण भगवान से, है वही कृष्ण लेकिन इस रूप में अति अधिक कृपा करते हैं। जो कृपा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण ने किया है। तो जिस तरह से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अधिक कृपालु हैं, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक कृपालु हैं। ये हमें समझने के लिए बहुत आवश्यक बात है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा कितनी होगी समझिए। तो ये है नित्यानंद, नित्य आनंद प्रदान करने वाले सभी को चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद, कृष्ण प्रेम प्रदायता। तो नित्यानंद प्रभु पंचतत्व के संग में, चैतन्य महाप्रभु के संग में आए, उन्होंने यहां नाना प्रकार की लीलाएं की। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों एक साथ में हमेशा रहे। श्री राधा गोकुलानंद की बताया जाता है कि ये दोनों सूरज और चंद्रमा की तरह हैं। गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो, और उनका उदय हुआ गौड़ देश के पूर्व दिशा में। पुष्पवंतो की सूरज और चांद दोनों, और फिर बड़े सुंदर उनका रूप था, और उनका अवतार क्यों हुआ छंदो तमोनुदो, मतलब संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए और सारा आशीर्वाद सारे संसार को प्रदान करने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। तो कब अवतीर्ण हुए नित्यानंद प्रभु? करीब 500 वर्ष पहले, उससे भी अधिक। बंगाल में एक गांव है एक चक्र। एक चक्र का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। एक चक्र गांव में और क्या हुआ था आप जानते हैं? पंच पांडव वहां रहे थे, वनवास के समय एक चक्र में आए थे, और वहां पर उन्होंने क्या लीला की थी? बकासुर का वध किया था। एक असुर था जिसका नाम था बकासुर, लेकिन कृष्ण लीला का बकासुर वो नहीं, ये और था एक बकासुर, और इसका वध यहां किया भीम। भीम वहां आए थे और ये असुर के डर से सारे जो गांव के वासी थे उन्होंने एक समझौता कर लिया था इस असुर से, क्योंकि ये राक्षस आकर कहीं भी किसी भी समय किसी को भी मारकर खा जाता था। तो गांव के निवासियों ने कहा कि ठीक है, हम हर रोज आपके पास एक आदमी भेजेंगे और उसके साथ में बहुत सारा और भोजन भेजेंगे। तो जो आदमी उस भोजन को ले जाता था बकासुर उस भोजन को खा डालता था और उस आदमी को भी खा डालता था। तो गांव के हरेक परिवार से साल में एक बार उनको एक आदमी भेजना पड़ता था। तो जिस ब्राह्मण के घर में पांडव रहते थे उस समय उस परिवार का समय आ गया एक व्यक्ति को भेजने के लिए। तो ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि हमारे पुत्र नौजवान को जाना चाहिए, ऐसे वह समझौता था कि हट्टे खट्टे आदमी को जाना चाहिए। तो जब नौजवान तैयार हो गया तो पिता ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। तो ब्राह्मणी ने कहा नहीं मैं जाऊंगी। तो आपस में तीनों ऐसे बहस कर रहे थे तो उस समय भीम ने कहा आप डरो नहीं, मैं जाता हूं, मैं निपटा लेता हूं ससुर का। और बहुत सारा भोजन लेकर गए और वहां पे खाते 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 आराम से गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। तो बकासुर ने देखा देर हो गई, प्रसाद आया नहीं, मेरा भोजन आया नहीं, और देखा कि भीम आराम से वहां खा रहे मेरा भोजन। तो बड़े गुस्से हुए और आक्रमण किया भीम के ऊपर। तो भीम ने एक हाथ से उनको रोका, दूसरे हाथ से खाते गए जब तक कि पूरा भोजन समाप्त नहीं हुआ। जब पूरा भोजन समाप्त हो गया तो हाथ पाथ धो लिए और फिर तैयार होकर बकासुर का वध कर दिया। तो वो स्थान है और काफी महत्व है उस स्थान का। आप में से जो मायापुर यात्रा में गए थे शायद आप एक चक्र भी गए होंगे, इस बार गए थे ना, इस बार तो ये कथा आपने सुनी होगी वहां पर। तो इस तरह से उसी गांव में एक चक्र में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। उनके माता पिता का नाम था हड़ाई पंडित ओझा और पद्मावती देवी। बड़े पुण्यवान बड़े धार्मिक ब्राह्मण थे वो। और जब उनका जन्म हुआ तो सारे शुभ लक्षण सब जगह प्रकट होने लगे, सब जगह सब कुछ शुभ लग रहा था। कोई वस्तु हर एक वस्तु जो है, पेड़ खिल रहे थे, पृथ्वी अधिक उत्पादन दे रही थी, जो मौसम है वो भी खिल उठा, और लोगों को समझ में आया कि कोई अद्भुत घटना हो रही है। नित्यानंद प्रभु का जन्म जब हुआ तो लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। कंदर्प से भी अधिक सुंदर ये बालक था, ये बच्चा था, और उसके जो लक्षण थे बड़े विचित्र थे, इतने विशेष लक्षण। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो तो उन्होंने और भी और अद्भुत कार्य करना आरंभ किया। अपने मित्रों के साथ में नित्यानंद अर्थात जिनको निताई कहते थे, वो ऐसे भगवान के लीलाओं के नाटक वगैरह करने लगे। जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो क्या खेलते हैं, चोर पुलिस ऐसे कोई क्रीड़ाएं करते रहते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ में कैसा खेल खेलते थे, केवल भगवान की लीलाओं के बारे में खेल करते थे। कृष्ण लीला करते थे, उनके अलग अलग अवतारों की लीला करते थे। एक बार उन्होंने ये नाटक किया कि सारे देवी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ में क्षीर सागर के तट पे गए हैं, वहां पुरुष सुक्त प्रार्थना का उच्चारण करके क्षीरोदक्षाय विष्णु को संतुष्ट कर रहे हैं और उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप प्रकट होइए, क्योंकि पृथ्वी माता के ऊपर पापी लोगों का बोझ इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी माता भी सहन नहीं कर पा रही है, कृपा करके आप अवतार लीजिए। और फिर कृष्ण का प्राकट्य लीला भी उन्होंने वहां उसका नाटक किया, वसुदेव देवकी का विवाह, फिर कंस के कारागार में कृष्ण भगवान का प्राकट्य, और फिर पूतना का वध, और फिर आगे चल के सारे असुरों का वध, बकासुर का वध, अघासुर का वध इत्यादि। और इस तरह से जब वो करते थे, उनके मित्र इनके साथ में इतना मग्न हो जाते थे कि उनको वो घर में जाना नहीं चाहते थे, भूल जाते थे। सुबह से शुरू होता था उनका खेल, रात तक चलता था। कोई खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, दिन भर नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते थे और कभी नित्यानंद प्रभु को छोड़ने की इच्छा नहीं रखते थे। और उनके माता पिता भी बच्चों के इतना प्रेम करते थे निताई से कि अपने ठीक अपने बच्चे के समान, बल्कि उससे ज्यादा। जिस तरह से वृंदावन में सारे ब्रजवासी कृष्ण और बलराम से इतना प्रेम करते थे कि अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करते थे, और उस तरह से नित्यानंद प्रभु और भी लीलाएं करते गए। कभी कभी वो वृंदावन खुद बना लेते थे और वृंदावन के सारे वन जंगल उसका भी वो सारा स्टेज करते थे, डेकोरेशन श्रृंगार करते थे। कभी कभी नाना प्रकार के अवतारों की लीला करते थे। एक बार उन्होंने सेतु बांध दिया सागर के पार, थोड़े वृक्षों के पन्ने लेकर सेतु बांध दिया, और फिर रावण का वध भी किया उन्होंने। कभी वो लक्ष्मण के भाव में आए तो इंद्रजीत के साथ उन्होंने वध किया, और वध जब उसके पहले बेहोश हो गए तो बेहोश होने के बाद में वो बिल्कुल वाकई बेहोश हो गए, लीला में इतने भाव विभोर हो गए। और फिर कोई जब सारे लोग गांव के लोग आए कि अरे निताई को क्या हो गया, बेहोश हो गया, तो उस समय किसी ने कहा कि ये लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा था, तो कौन हनुमान कौन बना था, तो बच्चे ने कहा मैं हनुमान हूं। ठीक है, जाके संजीवनी वो जो जड़ी बूटी है लेकर आओ। तो लड़का गया भागकर जंगल से कोई जड़ी बूटी लेकर आया, तो जब ये सुंगा दिया निताय को तो जब वो जाग गया। तो ऐसी लीलाएं करते थे। तो लक्ष्मण जी ने जब परशुराम के साथ में वाद किया, वो भी सारी लीला हो गई। फिर जब उन्होंने रावण के साथ भी युद्ध में ललकारा, वो भी लीला। और सारे गांव के निवासी आश्चर्यचकित रह जाते थे कि ये छोटे बालक को ये सब लीलाएं मालूम कहां से हुई, किसने बताया, हमने तो नहीं बताया इसे, इन छोटे बच्चों को सब कैसे पता चला, निताई ने बताया और निताई को कहां से पता चला, घर में तो हमने ऐसी सब लीलाएं बताई नहीं है। और इतने गहराई से इस सारे जो बोल रहे हैं बातें, ये सब कैसे पता चल गया इसे। तो निताई बड़े गंभीरता से जवाब देते थे, ये मेरी दिव्य लीलाएं हैं, आप नहीं समझोगे। तो सोचते कि छोटा बच्चा बोल रहा है, छोटे बच्चे बोलते रहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान जब लीला करते थे तो माता यशोदा को कभी ऐसे नहीं लगा कि ये कृष्ण है। और एक बार जब एक असुर का वध किया था तो माता यशोदा ने पूछा था उनको कि कैसे तुमने वध किया, ये क्या है। तो कृष्ण बताया कि पिछले अवतार में मैं राम बन के आया था, तो मैंने रावण जैसे असुरों का वध किया था, तो ऐसे छोटे मोटे असुरों का वध करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो अगर किसी कोई बच्चा अपने माता को ऐसे बोले तो माता क्या सोचेगी, बच्चा बड़बड़ कर रहा है। तो माता यशोदा ने भी सोचा कि अभी कुछ बड़बड़ कर रहा है, ठीक है ठीक है, पिछले अवतार राम थे बहुत देख ले, चलो चलो अभी आओ, अभी भोजन ले लो। तो उसी तरह से नित्यानंद प्रभु ने जब बताया कि ये सब मेरी दिव्य लीलाएं हैं, तो वो सब बड़े लोग सोचने लगे ठीक है बच्चा है बोल रहा है बोलने दो। तो भगवान की माया शक्ति के द्वारा कोई पहचान नहीं पाया कि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। तो इस तरह से सुंदर सुंदर लीलाएं 12 साल की उम्र तक नित्यानंद प्रभु निताई करते रहे। फिर एक बार हड़ाई पंडित के घर में एक सन्यासी आए। सन्यासी आए वो भ्रमण करते करते एक चक्र में आ पहुंचे थे, क्योंकि एक चक्र बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। कई दिन तक हड़ाई पंडित के घर में रहे। हड़ाई पंडित बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, धर्मपरायण थे, तो वो जानते थे कि साधुओं का सत्कार कैसे करना चाहिए। तो अच्छी तरह से उनकी सेवा की, और अंत में हड़ाई पंडित ने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो साधु ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए तो बताइए, मेरा सारा घर परिवार सब कुछ आपके हवाले है। तो उस सन्यासी ने जवाब दिया, मुझे आपका बेटा चाहिए। वैसे कभी कभी गृहस्थ बोल देते हैं ये हमारा परिवार हमारा सब कुछ आपके हवाले है, तो थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, कहीं मांग न ले वो। अब जब बोल देते हैं कि आपके हवाले और मुश्किल से कह दिया कि मुझे दे दो, तो फिर कठिनाई है। तो हड़ाई पंडित ने कह दिया मेरा परिवार आपका है, आपके हवाले कर दिया, ठीक है आपका बेटा दे दीजिए मुझे। तो जब हड़ाई पंडित ने सुना कि ये बेटा मांग लिया है, तो उनको बड़ा धक्का पहुंच गया, क्योंकि निताई से वो इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी वो भूलते नहीं थे निताई को। आखिर स्वयं भगवान है, और हड़ाई पंडित भगवान के पिता बने तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते, ये भी भगवान के नित्य पार्षद ही हैं। तो इस तरह से हड़ाई पंडित को मानो हृदय पे बड़ा धक्का पहुंच गया, बहुत रोने लगे, कहने लगे कि इसे छोड़ दीजिए, बाकी जो भी कुछ है आप ले जाइए, मेरा घर ले लीजिए, मेरे धन ले लीजिए, जो भी मेरे पास है कुछ भी ले लीजिए, लेकिन निताय को छोड़ दीजिए। तो साधु ने कहा नहीं, मैंने संकल्प कर दिया है। जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के दरबार में विश्वामित्र मुनि आए और राजा दशरथ ने कहा मेरा सब कुछ आपके हवाले है, क्या कर सेवा कर सकते हैं, तो विश्वामित्र मुनि ने कहा मुझे राम चाहिए असुरों का वध करने के लिए। राक्षस आके हमें यज्ञ के समय तंग करते हैं, यज्ञ को प्रदूषित कर देते हैं, इसलिए राम आएगा तो इन असुरों का वध करेगा और फिर हम ब्राह्मण लोग शांति से अपना यज्ञ संपन्न कर पाएंगे। तो उस समय दशरथ महाराज ने कहा राम तो एक कोमल बालक है, उसके 15 साल भी नहीं हुए अभी, और अभी इस राम को मांगेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरी सारी सेना है आपके हवाले, ये छोटा बालक क्या भयंकर राक्षसों का वध करेगा, ये सेना में अतिरथी महारथी रथी है सब, ये जाके असुरों का वध यूं कर देंगे, कोई घबराइए मत। विश्वामित्र मुनि ने कहा नहीं मुझे राम चाहिए। तो दशरथ महाराज डामाडोल हो गए, डगमगाए, क्या किया जाए, मैं नहीं दे सकता नहीं दे सकता। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये तो आपका बड़ा पाप हो जाएगा, जब आप साधु को वचन दे देते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, और वो मांगते हैं और फिर आप नहीं देते हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो दशरथ महाराज ने फिर बहुत भारी हृदय से राम को अनुमति दी जाने के लिए। उससे पहले वशिष्ठ मुनि ने बताया था कि चिंता नहीं करो, विश्वामित्र मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, ये मत सोचो कि विश्वामित्र मुनि कमजोर है इसलिए वो राम की सहायता के लिए आ रहे हैं, वो खुद उन असुरों का राक्षसों का अकेले अपने हुंकार मात्र से वध कर सकते हैं, अपने योग बल पर वो उनकी हत्या कर सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण का कार्य है शांति से यज्ञ करना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, ये सब ब्राह्मण के काम होते हैं। क्षत्रियों का काम होता है दुष्टों का नाश करना, इसलिए वो राम चाहते हैं, एक समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और वैसे भी राम विश्वामित्र के आश्रम में सुरक्षित है, कोई चिंता नहीं कीजिए। तो फिर जाकर वशिष्ठ मुनि ने दे दिया राम। तो उसी तरह से हड़ाए पंडित बड़े विचलित हुए थे कि क्या किया जाए। तो फिर अंततः दे दिया, क्योंकि देना था, अगर पाप लग जाता था नहीं देते थे। लेकिन आजकल तो ऐसे नहीं होता। प्रभुपाद जी शोक करते थे कि मैंने कितनी बार कितने परिवारों से कहा कि आपके तीन लड़के हैं, चार लड़के हैं, मुझे एक लड़का दे दीजिए ताकि मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार सब जगह कर सकूं, उनको ब्राह्मण बनाकर मैं कृष्ण भक्ति का आंदोलन फैला सकूं, समाज का कल्याण कर सकूं। लेकिन एक भी कुटुंब ने एक भी उनका बच्चा नहीं दिया। एक दक्षिण अमेरिका के सन्यासी आए थे, किसी दूसरे मठ में है, वैष्णव है, लेकिन तो वो बता रहे थे कि उनके माता पिता के कितने बच्चे हैं, 26 बच्चे। तो वो 26 भाई बहन हैं, और 26 ये 26वें नंबर के थे। और जब ये सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े तो माता पिता इतने रोए, वो कहने लगे 25 और हैं, क्यों चिंता करते हो। कहने लगे नहीं नहीं, तो माता पिता की आसक्ति ऐसे होती है, बोले 25 और भी हो लेकिन 26वां भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं उनको। तो बेचारे अकेले थे, हड़ाई पंडित उनके बेचे निताए, उनको छोड़ना तो बड़ा कठिन था, वो भी भगवान है स्वयं। और आजकल तो ऐसे दिखने में नहीं आता कि कोई अपना लड़का ब्रह्मचारी बनाए कि हम भगवान की सेवा के लिए से अर्पित कर देंगे, बहुत कम दिखने में आता है। भक्तों के बीच में भी ये हिचकिचाहट रहती है कि आसक्ति इतनी तेज है, संसार की आसक्ति, ये हम हमारे लड़कों को भी छोड़ने के लिए मन हिचकिचाते हैं। लेकिन हड़ाई पंडित ने कहा ठीक है, आप साधु हैं, आपकी सेवा में हम दे देंगे। तो उसके बाद में उनके संग में काफी उन्होंने भ्रमण किया। 12 साल पे वो घर छोड़ गए, काफी भ्रमण किया उन्होंने, तीर्थ यात्रा की, अयोध्या गए, कुरुक्षेत्र गए, हरिद्वार गए, हस्तिनापुर गए, और फिर दक्षिण भारत की ओर आए। वहां पर रामेश्वरम गए, शिवकांक्षी, विष्णुकांक्षी इत्यादि। शिवकांक्षी विष्णुकांक्षी में आकर उन्होंने देखा कि वहां के शैव और वैष्णव भक्तों में झगड़े होते रहते थे। शैव कहते थे शिव जी प्रमुख हैं, वैष्णव कहते थे विष्णु प्रमुख हैं, और उन दोनों में वाद विवाद झगड़े होते रहते थे। और इसको देखकर नित्यानंद प्रभु हंसते रहते थे, ये दोनों लोग भ्रमित हैं। वैष्णव शिव जी की महत्ता को नहीं जानते कि शिव जी कौन है, इसलिए केवल विष्णु विष्णु कह रहे हैं, शिव जी कौन है नहीं मालूम इन्हें। और शैव कहते हैं शिव जी, उनको विष्णु कौन है नहीं मालूम, इसलिए वो हंसते हुए वहां से निकल पड़े। ऐसे तीर्थ यात्रा करते करते फिर उनकी मुलाकात माधवेंद्र पुरी जी से हुई। माधवेंद्र पुरी वो लक्ष्मीपति के शिष्य थे। वास्तव में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय माधवेंद्र पुरी से आरंभ होता है, क्योंकि माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा हालांकि मध्व संप्रदाय में ली थी, लेकिन फिर भी मध्व संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी पहली बार से राधा कृष्ण की उपासना करने लगे, जो कि मध्व संप्रदाय में पहले प्रचलित नहीं था, और वो भी माधुरी भाव में, श्रृंगार रस में। जिस भाव में गोपियां वृंदावन में कृष्ण की भक्ति करती थी, वही भाव में माधवेंद्र पुरी ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। इसलिए वास्तव में गौड़ी संप्रदाय आरंभ हुआ माधवेंद्र पुरी से। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम के विशाल वृक्ष हैं, और इस वृक्ष के जड़ या मूल हैं माधवेंद्र पुरी, क्योंकि माधवेंद्र पुरी से ही यह बीज निकला। माधवेंद्र पुरी ने बीज बोया जिससे चैतन्य महाप्रभु नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। और यह चैतन्य रूपी वृक्ष का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली शाखा है नित्यानंद प्रभु, और ये नित्यानंद प्रभु के भी कई शाखाएं हुई, जैसे कि वीरभद्र गोसाई जो उनके पुत्र थे, लेकिन आगे वो भी विष्णु तत्व है, अवतार है भगवान के, वो हुए। और उनके कई भक्त हुए, द्वादश गोपाल जो कृष्ण बलराम के संग वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में ग्वालबाल हैं, वो गौओं को चराते हैं कृष्ण के साथ, बलराम जी के साथ रमण करते रहते हैं, उन्होंने भी अवतार लिए थे। उनमें से ऐसे कई उनके बड़े बड़े शिष्य हुए, उनके साथी हुए, जैसे कि एक शिष्य थे जिनका नाम था रामदास, जो आगे चलकर अभिराम गोपाल ठाकुर बने, बड़े शक्तिशाली भक्त। और एक भक्त थे उनके मुरारी चैतन्य दास। मुरारी चैतन्य ऐसे एक निर्भय भक्त थे कि वो जंगल में जाते और शेरों को आलिंगन करके उनको थप्पड़ मारते ऐसे थे, और शेर भी उनसे कुछ कर, शेर भी उनका कुछ करते नहीं थे। और ये रामदास अभिराम गोपाल ठाकुर भी ऐसे शक्तिशाली भक्त थे कि वो अगर कहीं प्रणाम करते, अगर वो प्रामाणिक, अगर वो सही सला, वो विग्रह नहीं होता तो वो टूट जाता, भंग हो जाता, ऐसे थे वो शक्तिशाली भक्त। तो सभी लोग घबराते थे कि हमें दंडवत ना करें, दंडवत करें और हमारे अंदर इतने सारे भौतिक इच्छाएं हैं तो हमारा क्या होगा। ऐसे उनके कई भक्त हुए। तो ये सबसे ऊंचे और शक्तिशाली शाखा है। माधवेंद्र पुरी जी का दर्शन करने के बाद नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो गए। माधवेंद्र पुरी के लक्षणों को देखकर उन्हें पता चला कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण साधु भी नहीं है। तो उनसे दीक्षा ले ली, अपने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। और इस तरह से आगे चल के नित्यानंद प्रभु कई सालों तक इधर उधर रहे, वृंदावन में भी रहे। और जब जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ नवद्वीप में, तब भी नित्यानंद प्रभु लौट कर नहीं आए नवद्वीप। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने निमाय पंडित के रूप में अपने भक्ति मार्ग में एक भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, प्रकट किया, तब नित्यानंद प्रभु आए। जैसे आपको मालूम है कि कई सालों तक निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु ने नाटक किया एक केवल साधारण विद्वान का, संस्कृत विद्वान का। न्याय सिखाते थे, व्याकरण सिखाते थे अपने शिष्यों को, और भक्तों का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, भक्तों की निंदा किया करते थे, इसलिए भक्त लोग उनसे दूर ही रहते थे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु नहीं आए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के श्राद्ध के लिए गए, चले गए, वहां ईश्वरपुरी से, ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ, उनसे दीक्षा स्वीकार की, और उसके बाद जब लौट कर आए नवद्वीप, तो उनमें ऐसा परिवर्तन हो गया कि इस परिवर्तन को देखकर सारे नवद्वीप के निवासी आश्चर्यचकित रह गए कि वही निमाय पंडित जो भक्तों की तिरस्कार करता था, उनका मजाक उड़ाता था, जो केवल एक शुष्क ज्ञानी था, व्याकरण और न्याय में रुचि रखता था, आज भगवान श्री कृष्ण का इतना अनन्य भक्त हो गया है कि दिन रात सड़क पे नाम संकीर्तन करते चलता है और सबको साथ में लेकर घूमता फिरता है, कृष्ण कृष्ण कह के घूम रहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन किया, तो उस समय नित्यानंद प्रभु भी वहां पर पहुंचे और वहां पे उनका उनकी मुलाकात हुई। ये और एक लंबी कथा है, कैसे मुलाकात हुई, कहां हुई। तो खैर, उसके बाद ही नित्यानंद प्रभु ने प्रचार करना आरंभ किया। इसका मतलब है कि हम भगवान और गुरु के आदेश से ही हम प्रचार करते हैं। जब हमें आज्ञा दी जाती है कि आप ऐसा कार्य करो, तो हमें करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अब हमारे लिए, सबके लिए आदेश दे दिया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा होए गुरु तार ए देश। जिसे भी मिलो उसे कृष्ण का उपदेश करो, सबको कृष्ण के बारे में बताओ और इस तरह से गुरु बनो। गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम बड़े आसन पर बैठे और गुरु का पद स्वीकार करें और लोग हमारे पाद पूजा करेंगे, हार पहनाएंगे, नहीं। गुरु का मतलब है कि हम श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोगों को कृष्ण का उपदेश देंगे। और ये गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु वास्तव में बलराम जी हैं और बलराम जी आदि गुरु कहलाते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु हालांकि आदि गुरु हैं, पर वो भी उनके गुरु चैतन्य महाप्रभु के आदेश के पहले उन्होंने प्रचार आरंभ नहीं किया। तो अगर नित्यानंद प्रभु ने हमें उदाहरण दिखाया कि हमें कैसे करना चाहिए, बिना अधिकार के हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने फिर चैतन्य महाप्रभु के संग हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन फैलाना आरंभ किया। कई लीलाएं किए, सुंदर सुंदर, इन लीलाओं का आज शाम को भी हम वर्णन करेंगे। इतने कृपालु थे, जगाई मधाई जैसे नीच पतित लोगों का भी उद्धार उन्होंने किया। इतना होते हुए भी कभी कभी ऐसे थोड़े लोग हुआ करते थे जो नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं पाए, सोचे थे कि नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति है। और कोई ऐसे लोग थे जो चैतन्य महाप्रभु को मानते थे लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, नित्यानंद प्रभु की एक शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था मीनकेतन रामदास। एक बार ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में आए और बड़े अच्छी तरह से स्वागत किया उनका, मीनकेतन रामदास का। जहां वो आसन ग्रहण करके विराजमान हुए, उनके भक्ति की उनके भक्ति भाव को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए और सभी लोग आके उनको दंडवत कर रहे थे। तो प्रेमावेश में आकर मीनकेतन रामदास कभी कभी जिन भक्तों ने उनको दंडवत किया था उनके कंधे पे चढ़ जाते, कभी कभी उनको हल्के से थप्पड़ मार देते, कभी कभी उनके पास जो बांसुरी हुआ करते तो उससे उनको छड़ी के रूप में उनको मार देते, ऐसे प्रेमावेश में, भावावेश होकर। तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में विग्रह थी राधा कृष्ण की, तो उनकी पूजा कर रहे थे एक ब्राह्मण जिनका नाम था गुणार्णव मिश्र। तो जब ये आए अंदर मीनकेतन रामदास, तो सही तरह से स्वागत और सत्कार नहीं किया गुणार्णव मिश्र ने इनका। हालांकि सब अन्य और उठे, मीठे शब्द बोले, दंडवत किया, लेकिन गुणार्णव मिश्र ने ऐसे नहीं किया। तो उस समय मीनकेतन रामदास ने सोचा अपने ही मन में कि मेरे प्रति इन्होंने अपराध किया इसकी कोई बात नहीं, लेकिन मैं नित्यानंद प्रभु का शुद्ध मैं भक्त हूं, उनका प्रतिनिधि हूं, तो उन्होंने मेरा अपमान किया, इसका मतलब इन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया। इसके हृदय की बात मैं जान चुका कि इसने मेरा अपमान इसलिए किया है कि इसके हृदय में नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपराधी भावना है इसके हृदय में नित्यानंद प्रभु के भीतर। इसलिए वो जोर से हंसे और उस समय थोड़ी देर से जोर से संकीर्तन करने के बाद मीनकेतन रामदास का वाद हुआ कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के साथ में। उनके भाई ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु में विश्वास करता हूं लेकिन नित्यानंद प्रभु में ज्यादा श्रद्धा मुझे नहीं है। तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको डांटा अपने भाई को और कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक हैं, आप उनका भेद ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर आपको चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा है और नित्यानंद प्रभु में नहीं है तो यह तो अर्ध कुकुट्टी न्याय हो गया। अर्ध कुकुट्टी न्याय मतलब आप जानते हैं ना, कि एक बार एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी आई। तो वो मुर्गी बड़ी विचित्र थी, हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, शुद्ध सोने का। तो किसान बड़ा खुश हो गया, लेकिन जैसे जैसे सोना आता गया और भी ज्यादा अमीर बढ़ता गया, उतना ही ज्यादा कंजूस भी बढ़ता गया होता गया, यही अक्सर होता है। तो उसने सोचा कि ठीक है, सोने का अंडा तो मिल रहा है लेकिन खर्चा भी तो हो रहा है मेरा, हर दिन इस मुर्गी को खिलाना पड़ता है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसका गर्दन ही काट दूं तो उसको खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो केवल अंडे आते रहेंगे सोने के, तो खर्चा नहीं आमदनी हो जाता, अच्छा, कितनी अच्छी बात है। श्री श्री राधा गोकुल आनंद की जय। तो उसने मुर्गी की गर्दन काट दी, तो क्या सोने के अंडे फिर उसे मिले बाद में? नहीं। उसने चाहा कि मैं एक हिस्सा लूंगा मुर्गी का लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं लूंगा, कैसे हो सकता है? तो ठीक उसी तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक हैं, आप केवल चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करेंगे और फिर नित्यानंद प्रभु को नहीं, ये तो हो नहीं सकता। केवल कृष्ण को स्वीकार करेंगे बलराम को नहीं, केवल कृष्ण को स्वीकार करेंगे राधा को नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह से जब उन्होंने डांटा तो वाद वहां समाप्त हो गया। तो जोर से हंसकर मीनकेतन रामदास ने अपने बांसुरी अपने पैरों से मारकर तोड़ दिया और निकल पड़े वहां से। और उस समय से उनके कृष्णदास कविराज के गोस्वामी के भाई उनका पतन हो गया भक्ति मार्ग से, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति यह अपराध किया था। लेकिन क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की ओर से तर्क किया था, इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर हुई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो नित्यानंद के की अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो नित्यानंद प्रभु का गुणगान करता है उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा हो जाती है, और इसका उदाहरण दृष्टांत मैं हूं। वो कहते हैं कि उसी रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक मेरे सपने में वही नित्यानंद प्रभु आए, और उनका बड़ा सुंदर रूप था, आभूषणों से अलंकृत, और उन्होंने नील रंग का नीलांबर पहना हुआ था, और वो झूम रहे थे कृष्ण कृष्ण कहते हुए, और उनके चरण कमलों के इर्द गिर्द कई मधुमक्खियां थीं, और उनके साथ में कई ग्वाल बाल इधर उधर खेल रहे थे गऊओं के संग में, और ऐसे वो मदोन्मत हो गए थे कृष्ण प्रेम में, झूमते फिरते कृष्ण का नाम का उच्चारण कर रहे थे। और उन्होंने देखा मेरी ओर और कहा, कृष्णदास जाओ वृंदावन की ओर, वहां तुम्हारे सारे इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, जाओ वृंदावन की ओर। तो ऐसे उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया वृंदावन की ओर, और ठीक उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी नींद से जागे, और जब उनको स्वप्न फिर से याद आया कि नित्यानंद प्रभु का आदेश ऐसा है, तो तुरंत इसी क्षण वहां से निकलकर वो वृंदावन की ओर चल पड़े। रुके नहीं खबर देने के लिए किसी को कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, किसी की अनुमति लेने के लिए, या अपने पैसे का बंटवारा करने के लिए, अपने फिक्स डिपॉजिट इनके नाम करना, वो वहां उनके नाम करना, कुछ नहीं, सीधे चले वृंदावन की ओर। और बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मुझे वृंदावन प्राप्त हुआ, मुझे रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी के शरण प्राप्त हुए, मुझे कृष्ण भक्ति मिली, वृंदावन मिल गया मुझे केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर कोई अपराध करता है उसका फल भी भयंकर होता है। एक बार ऐसे हुआ कि रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था, वही व्यक्ति है ये रामचंद्र खान जिसने हरिदास ठाकुर के प्रति द्वेष भावना रखकर वहां एक वेश्या को भेजा था हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर का पतन तो नहीं हुआ, बल्कि वो वेश्या ही कृष्ण भक्त बन गई, शुद्ध भक्त बन गई, और उस वेश्या का उद्धार करके हरिदास ठाकुर वहां से निकल पड़े। ये कथा आप सबको मालूम है। वही रामचंद्र खान, उसने हरिदास ठाकुर के प्रति इतना बड़ा अपराध किया तो उसका फल तो मिलना ही था। तो इस वेश्या को वहां भेजकर जो वैष्णव अपराध का बीज रामचंद्र खान ने बो दिया अपने हृदय के क्षेत्र में, वो आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष हो गया, वो वृक्ष के कई फल हुए, और फिर यही रामचंद्र खान को उन फलों को खाना पड़ा। और इसके बारे में एक सुंदर लीला है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु एक बार भ्रमण करते करते उस गांव में आए जहां रामचंद्र खान रहते थे, और सीधे उनके घर में ही आए। उस जमाने में बंगाल में अंदर का घर होता था और बाहर का घर होता था। जो माताएं होती थीं वो केवल अंदर के भाग में रहती थीं, बाहर नहीं आया करती थीं, क्योंकि बाहर पुरुष लोग रहते थे, तो बाहर के पुरुषों से माताजी मिलते नहीं थे। और बाहर क्योंकि बंगाल में उस समय दुर्गा जी का महत्व काफी था, दुर्गा पूजा लोग करते थे, आश्विन के महीने में दुर्गा पूजा बड़े बड़े पैमाने से बंगाल में मनाया जाता है, तो वहां पर दुर्गा मंडप हुआ करता था। तो उस दुर्गा मंडप में आकर नित्यानंद प्रभु विराजे और उनके उनका दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आने लगे। तो रामचंद्र खान ने सोचा कि ये व्यक्ति अवधूत है, कैसे दिखता है, क्या बोल रहा है, इसका व्यवहार भी बड़ा विचित्र है और मेरे घर में आके यहां बैठे हैं ये। तो उन्होंने अपने नौकर से संदेश भेजा नित्यानंद प्रभु को कि कृपा करके आप जाकर किसी अन्य साधारण व्यक्ति के घर में रहिए, क्योंकि वहां जगह हो सकता है, यहां मेरा घर छोटा है, यहां जगह नहीं है। और अच्छा होगा कि किसी आप गोयल के पास, कोई ग्वाले के पास जाएं, क्योंकि गौशाला में बहुत ज्यादा जगह ज्यादा होता है, वहां पे आप आराम से रह सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो जोर से हंसकर वहां से निकल पड़े। तो उन्होंने कहा कि ये ग्वाल मुझे गौशाला में रहने का इंतजाम कर रहे हैं, तो ठीक है। इसी दुर्गा मंडप में थोड़े दिन बाद में एक भीषण दुर्घटना होने वाली है और यहीं पर कोई व्यक्ति आकर गाय का मांस खाने वाले हैं। तो ऐसा एक भयंकर भविष्यवाणी करके नित्यानंद प्रभु वहां से चले गए। उधर इस भविष्यवाणी से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए रामचंद्र खान, और उन्होंने नौकर से कहा कि जो स्थान में ये अवधूत बैठे थे उस स्थान के ऊपर गौमूत्र और गोबर का मिश्रण करके उसको छिड़को और साफ करो, उसको शुद्ध करो। देखिए, जहां स्वयं भगवान आए हैं वो जगह तो शुद्ध हो जाती है, लेकिन रामचंद्र खान सोच रहे थे कि यह अशुद्ध हो गया है। और गोबर और गौमूत्र से छिड़कने के बाद, साफ करने के बाद भी रामचंद्र खान का मन संतुष्ट नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि अभी भी ये स्थान अस्वच्छ है, कितना बड़ा अपराध हुआ। तो थोड़े दिन बाद में वहां के जो मुसलमान नवाब थे उनके मंत्री यहां पर रामचंद्र खान के पास आए, क्योंकि रामचंद्र खान ने टैक्स नहीं भरा था बहुत लंबे समय से, और नवाब को मालूम था कि इसने बहुत धोखेबाजी की है, बहुत सारा धन मुझे देना था लेकिन इसने दिया नहीं है, तो इनकम टैक्स रेड कर दिया। और जब रेड किया वहां पर आए अपने सारे सिपाहियों के साथ में, तो रामचंद्र खां और उनके सारे परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया और घर को पूरा लूट डाला, सारा पैसा जो भी था सब ले लिया, हड़प कर लिया। और इतना ही नहीं, सारे गांव को लूट लिया उन्होंने, गांव में जो भी लोग थे उनसे सारा धन छीन लिया, सारे लोग वहां से भाग गए, गांव खाली का खाली हो गया। और उसी दुर्गा मंडप में बैठकर 3 दिन निवास किया इस मुसलमान नवाब के मंत्री ने, और वहीं पर गाय की हत्या की और गाय का मांस खाया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस स्थान में किसी महाभागवत महंत का, किसी बड़े व्यक्ति का अपमान होता है, उस एक व्यक्ति के दोष के लिए वो सारा देश या गांव खत्म हो जाता है। और ठीक ऐसे ही हुआ, एक रामचंद्र खान ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया तो सारा गांव नष्ट हो गया। तो जो फल समाज को प्राप्त हो सकता है बड़े बड़े संतों की, वैष्णवों की, भक्तों की का आदर सत्कार करके, उनकी सेवा करके, उतना ही नुकसान हो सकता है उस समाज को जो कि वैष्णवों का, भक्तों का निरादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं। सो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं समाज में वो पाप की वजह से भी है और वैष्णव अपराध के प्रति भी है के वजह से भी होता है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बहुत बचकर रहना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि आपस में बड़े प्रेम से रहें, नम्रता से रहें, एक दूसरे का आदर सत्कार करके हुए रहें, कभी भी सम्मान की अपेक्षा न करें, क्योंकि जब हम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से हम दूसरों को अपमान कर बैठते हैं। इसलिए हमें तृण से भी अधिक नम्र होकर रहना चाहिए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है। तो खैर, नित्यानंद प्रभु का स्थान वैष्णवों के जीवन में क्या है यह हम समझ सकते हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो गई तो नित्यानंद तो वृंदावन प्राप्त हो सकता है, जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी को हुआ। और अगर अपराध कर बैठते हैं तो रामचंद्र खां जैसे हमारी परिस्थिति हो सकती है। तो हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे महाभागवतों के चरणों में चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए और उनका आश्रय लेना चाहिए। आज शाम को आगे चल के हम और नित्यानंद प्रभु की कई लीलाओं का वर्णन करेंगे।